कुलुसियुस का पहला अध्याय 15 पद से लेकर 23 पद तक। एक संडे पहले जब हम इकट्ठा हुए थे परमेश्वर की आराधना के लिए, सो आपको याद होगा कि मैंने कुलुसियुस की पत्री को आरंभ किया था। तो उस समय कुलुसियुस का पहला अध्याय और पहले पद से लेकर हमने 14 पद तक देखा था, और हमने इस बात को देखा था किस प्रकार से पौलुस कुलुसियुस की पत्री का आरंभ कर रहा है। यद्यपि विस्तार में हम ज्यादा नहीं गए, लेकिन हमने चार मुख्य बातों पर विचार किया था। चार मुख्य बातें थी। पहली बात, आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाओ। दूसरी बात, परमेश्वर के योग चाल चलन। तीसरी बात, धीरज का जीवन। चौथा, आनंद से परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो चार बातें थी। एक निरंतर आत्मिक जीवन में बढ़ना है, अपने चरित्र को, अपने जीवन को, अपने चाल चलन को बनाए रखना है। तीसरी बात, जीवन में धैर्य बनाए रखना है। और चौथी बात, आनंद से परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सो ये चार बातें हमने पहले भाग में देखी थी, लेकिन आज जो मुख्य भाग हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुलुसियुस का पहला अध्याय 15 पद से लेकर 23 पद तक के दूसरा खंड है जो इस अध्याय में है। और इस दूसरे खंड में एक मुख्य प्रश्न है जिसका उत्तर दिया गया है। प्रश्न यह है कि यीशु कौन है? Who is Jesus? यीशु कौन है? न केवल ये, लेकिन इस प्रश्न के साथ साथ ये भी है कि यीशु मसीह प्रत्येक वस्तुओं का केंद्र है। प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुओं का केंद्र है। और इन बातों को हम देखते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। और जब हम इन बातों को देखते हैं कि मुख्य थीम यीशु कौन है, तो एक बात और उसके साथ जुड़ जाती है। अगर यीशु कौन है तो मुझे यीशु के साथ मुझे क्या करना है? मेरा प्रतिउत्तर यीशु के प्रति, मेरा प्रतिउत्तर यीशु के प्रति, आगे हम देखेंगे। लेकिन जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो इन 15 से 23 पदों को हम तीन खंडों में भाग सकते हैं। तीन मुख्य खंडों में, तीन भाग में हम भाग सकते हैं। पहला खंड है 15 पद से लेकर 17 पद तक, यीशु इस सृष्टि का केंद्र है। यीशु इस सृष्टि का, पूरी संसार की जो सृष्टि है उसका केंद्र है। दूसरी बात, यीशु इस नई सृष्टि का केंद्र है। जो नई सृष्टि जिसके बारे में वचन मैं बताता हूं, देखेंगे, उसका केंद्र है, जो 18 पद से लेकर 20 पद तक है। 21 से 23 तक यीशु हमारे छुटकारे का केंद्र है। सो ये तीन मुख्य बिंदु पर हम आज विचार करना चाहेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आप आगे चल करके कम से कम जब हम दूसरे एक और भाग में आएंगे तो एक अध्याय के उन बिंदुओं को आप समझ जाएं। जैसे पहले भाग में हमने चार बिंदु देखे थे कि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है, हमें अपने चरित्र में, चाल चलन में बढ़ना है, हमें धैर्य में बढ़ना है, और हमें परमेश्वर के आनंद में, उसके धन्यवाद में बढ़ना है। तो पहले अब ये तीन बिंदु और उसमें ऐड हो जाएंगे तो सात हो जाएंगे। पहले भाग में यीशु इस सृष्टि का केंद्र है। जब पौलुस इन सारी बातों का वर्णन कर रहा है तो इस बात को बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सिद्ध प्रतिनिधि है परमेश्वर का। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है, और सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने मानव सृष्टि के द्वारा, आरंभ में जब उत्पत्ति में सृष्टि की तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, ताकि संसार मनुष्य को देखकर परमेश्वर को देख सके। पेड़ पौधों के द्वारा नहीं, जीव जंतुओं के द्वारा नहीं, लेकिन मनुष्य के द्वारा, जो उसने आदम हवा की सृष्टि की, क्योंकि आदम और हवा को उसने अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाया। अर्थात जो परमेश्वर का अस्तित्व, जो परमेश्वर का गुण है, जो परमेश्वर के वर्च्यूज है, वो उसने मनुष्य के अंदर डाले। और ये परंतु पर मनुष्य अपने उस स्वरूप के द्वारा परमेश्वर का प्रतिबिंब नहीं बन पाया। शीशे में आप अपने रूप को देखते हैं, वो प्रतिबिंब होता है कि आप उसको देखते हैं शीशे में, जैसे आप में वैसे दिखाई देता है। मनुष्य के पाप के कारण गिरने के कारण मनुष्य की सिद्धता समाप्त हो गई, और मनुष्य की सिद्धता समाप्त होने के कारण अब मनुष्य परमेश्वर के प्रतिरूप को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। परमेश्वर मनुष्य की इमेज को नहीं दर्शा सकता, क्योंकि अब उसकी इमेज पाप के कारण क्या हो गई, बिगड़ गई। पर जब हम इस पदों पर पाते हैं, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीज में आएंगे दूसरे भाग में, लेकिन पहले भाग में अब यहां पर यीशु कौन है, पौलुस किस प्रकार से समझाना चाह रहा है। वो कह रहा है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि का पहला था। दो बातें, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा और परमेश्वर को कोई कभी देख नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं निर्गमन में, जब परमेश्वर मूसा से बात करता था, मूसा परमेश्वर के दर्शन को करना चाहता था, मूसा ने कहा कि परमेश्वर से कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा तू मुझे देख नहीं सकता, अगर तू देखेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो इतना अधिक पवित्र है कि हम उसकी पवित्रता के सामने। फिर भी परमेश्वर ने उसको अपना एक रूप से दर्शन दिया जो पीछे के रूप से था, लेकिन एक महिमा एक ज्योति उस सामने प्रकट की। परंतु अगर परमेश्वर को मनुष्य कोई जानता तो कैसे जान सकता था, कैसे जान सकता था। और यही कारण था कि परमेश्वर को मनुष्य जानने का प्रयास करने के कारण ही उसने अलग अलग परमेश्वर के प्रतिरूप बना लिए, अलग अलग मूर्तियों में, अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग चीजों में, और वो उनमें परमेश्वर को देखना चाहता था। ये आरंभ से ये राज चला, और तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। वो कहता है यीशु कौन है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, पहली बात, पहली चीज, अदृश्य परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसको कोई कभी नहीं देख सकता, उस परमेश्वर का प्रतिरूप है। अर्थात क्या मतलब है कि उस यीशु को देखकर हम परमेश्वर को देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह सेवा में थे, यूहन्ना उसके 14 अध्याय में, और तब लोग उससे बातचीत करने लगे, कुछ शिष्य थे उनसे बात करने लगे, और तब क्या हुआ, फिलिप्पुस ने यीशु से कुछ पूछ लिया, यूहन्ना का 14 अध्याय उसके 8 पद, फिलिप्पुस ने उसे कहा हे प्रभु हमको पिता को दिखा दे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु ने उससे कहा फिलिप्पुस मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं फिर भी तू मुझे नहीं जानता, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो कैसे कहता है हमको पिता को दिखा दे, क्या तू विश्वास नहीं करता मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। 11 पद, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए मनुष्य बनकर आ गए कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को देख सके, परमेश्वर को जान सके। यह सबसे मुख्य एक परमेश्वर की योजना थी, मनुष्य की परमेश्वर को जानने की इच्छा आरंभ से रही। आदम की वाटिका में भी जब आदम और हवा थे और जब परमेश्वर ने उनको बनाया था, परमेश्वर के साथ संगति करता था, उनसे बातचीत करता था, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही पाप आया वे छिप गए, उसके बाद से हुआ लोग। अब तब हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर उनके साथ व्यवहार किया। जब उत्पत्ति अगर पहले दूसरे तीसरे अध्याय को हम पढ़ते हैं तो कुछ बातें हमें मालूम चलती हैं, और उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय जो खासतौर से 14 पद से लेकर है और 24 पद तक, वो बहुत मुख्य पद है पूरी बाइबल के लिए, पूरी बाइबल के लिए उत्पत्ति इसके 3 अध्याय के 14 पद से लेकर 14 पद तक बहुत मुख्य पद है, जिसके आधार पर ही हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते कि परमेश्वर की योजना कहां से आरंभ होती है। लेकिन वहां पर क्या हुआ था, वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के कारण उसको दंड दिया, शैतान को शाप दिया, मनुष्य को शाप नहीं दिया, मनुष्य को दंड दिया। स्त्री को शाप नहीं दिया, स्त्री को दंड दिया। शाप में और दंड में फर्क है। और तब उसके बाद परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया, अदन की वाटिका से निकाल दिया। क्यों? अदन की वाटिका में दो वृक्ष थे, एक वृक्ष जो बुद्धि और ज्ञान को देने वाले थे और दूसरा था जो परमेश्वर के जीवन को पाने वाला था। और जब आप उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय में आप आते हैं और 23 पद से आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको मालूम चलेगा परमेश्वर ने यही कहा, उसने अदन की वाटिका से उन्हें वहां निकाल दिया और वहां पर पहरा बैठा दिया ताकि ये जीवन के वृक्ष के फल को ना खाने पाए। लेकिन तब आगे चलकर हम पढ़ते हैं जब प्रकाश वाक्य में आते हैं तो जो जय पाएगा वो जीवन के वृक्ष के फल का भागी होगा। अर्थात परमेश्वर ने उस फल को सुरक्षित रखा ताकि उद्धार पाए हुए लोग उस नए यरूशलेम में प्रवेश करके उसका आनंद उठा सके। तो यहां पर पहली बात लिखा है कि वो जो यीशु कौन है, यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप है। अर्थात परमेश्वर को अगर हम जान सकते हैं संसार में तो यीशु के द्वारा ही जान सकते हैं और किसी के द्वारा नहीं जान सकते। जिसने यीशु को जाना है उसने परमेश्वर को जाना है, जिसने यीशु को पाया है उसने परमेश्वर को पाया है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आया। तो पहली बात, वो कौन है? वो परमेश्वर का अदृश्य है, परमेश्वर का प्रतिरूप है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर को हम नहीं देख सकते लेकिन यीशु को देखा जा सका है। योना मैंने 14 अध्याय पढ़ा, योना उसके पहले अध्याय 14 पद में जब हम देखते हैं पहले अध्याय में परमेश्वर का वचन देता है वह हमारे बीच में डेरा क्या, लेकिन आगे चल के क्या लिखा हुआ है योना उसके एक अध्याय 14 पद में, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से, वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। सृष्टि कैसे ही? वचन के द्वारा। और इसीलिए उत्पत्ति के पहले 3 अध्याय में ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप जब आप पढ़ते हैं तो आप इस बात को देखेंगे परमेश्वर जो संबोधन करता है वो बहुवचन में करता है। आओ हम मनुष्य को बनाएं, आओ हम ऐसा करें, मैं शब्द नहीं है वहां, बहुवचन है, एक से अधिक। तो वहां परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर वहां पर उपस्थित है, पवित्र आत्मा वहां पर उपस्थित है, पवित्र आत्मा जल पर मंडा रहा है और वचन के द्वारा सृष्टि हो रही है। सो ये वचन परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, और यही वचन जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह में होकर इस संसार में देहधारी हुआ। कुलुसियों का पहला अध्याय और उसका 15 पद ऐसा पद है जिसमें लेकर के बहुत सारी गलत शिक्षाएं आरंभ हो गई हैं। यहोवा विटनेस इसी को लेकर आगे बढ़ते, यीशु को आज लोग तरह तरह से सामने रखते हैं। कोई नबियों में से एक मानता है, कोई इस बात को, अरे वो तो सिस्टम फॉलो था, लेकिन क्या मतलब है हम देखेंगे ये है, तो तरह तरह से इसको, लेकिन वास्तविक स्थिति में जानना यीशु कौन है। यही यीशु जिसके लिए आगे चलकर फिलिप्पियों में लिख पाते हैं दूसरे अध्याय में कि वो आज्ञाकारी रहा, मनुष्य बना, शून्य, उसने अपने आप को शून्य करा, आज्ञाकारी रहा और यहां तक उसने मृत्यु वहां क्रूस की मृत्यु से ली। फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय में 5 पद से हम आगे पढ़ते हैं और तब आगे लिखा है इसीलिए परमेश्वर ने वो उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है कि एक दिन हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। आज मनुष्य उसका तिरस्कार कर सकता है, उसका इनकार कर सकता है, हम उसका इनकार कर सकते हैं, उसका तिरस्कार कर सकते हैं। आपको समझना है यीशु केवल चंगा करने वाला नहीं है, 10 गुरुओं में से एक गुरु नहीं है वो, ठीक है हम यीशु बाबा के पास जाएंगे यीशु बाबा हमें चंगा कर देंगे, वो चंगा करने वाला बाबा नहीं है, हमें समझना इस बात को। आज बहुत सारी भीड़ की भीड़ उसके पीछे इसलिए जा रही है कि उसका चंगा करने वाला बाबा समझती है, और कई लोग तेल बेचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं उसके नाम से पैसा। एक दिन परमेश्वर की मान उनको पड़ेगी, बचेंगे नहीं वो लोग, तो गलत कर रहे हैं, परमेश्वर का जन्म को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। और इसलिए हमें समझना है यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपको यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह कौन है, क्यों मैं यीशु मसीह को मानूं, क्यों मैं उसकी आराधना करूं, क्यों मैं उसकी उपासना करूं? संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन फिर मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं चलूं? तो प्रभु यीशु मसीह अन्य में से एक नहीं है, अन्यों के समान नहीं है। दस हमने लगा लिया उसमें से एक ही है, नहीं नहीं नहीं, अगर दस में से एक लगा के रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है, विशिष्ट है। वो आगे तो क्यों कह रहा है कि वो सृष्टि में क्या है, पैलौठा है। पैलौठा का मतलब क्या है? अब ये पैलौठा का मतलब ये मतलब नहीं है कि वो पहला पुत्र करके संबोधित करा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल की भाषा को हमें समझना है, और बाइबल की भाषा में मैं कई बार बोलता हूं, बाइबल में तीन तरह से बातों समझना है। चित्रात्मक बातें हैं, तुलनात्मक बातें हैं, चित्रात्मक तुलनात्मक है, और कुछ बातें हैं जो चित्रों के समान समझाई गई हैं। तो पौलुस यहां वचन को लिखते हुए तुलना कराए, पैलौठे का क्या अधिकार है, पैलौठे का मतलब क्या है। उस समय में क्या होता था कि पैलौठा सब चीज का स्वामित्व होता, स्वामित्व उसके हाथ में रहता था, अधिकार उसके हाथ में रहता था, अधिकार उसके हाथ में रहता था। तो जब वो कह रहा है कि सृष्टि में पैलौठा है, तो ये कहना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है कि वो जो सबसे पहले है, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, वो स्वयं है, उसके पास सब अधिकार है, पिता का सर्व अधिकार है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो उसको लोगों के पापों की क्षमा करने का ही अधिकार था। जब उसने बीमारों को देखा, रोगों को देखा और कहा ठीक है तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोग कहें इसके पास कौन सा अधिकार है पाप क्षमा करने, ये तो केवल परमेश्वर के पास है। लेकिन यीशु के पास वो अधिकार पाप क्षमा का अधिकार है, यीशु के पास जीवन देना अधिकार है। जो पिता के पास अधिकार है, वो सारा अधिकार इस पॉलिटिक पास है, इसके पास है, जो स्वयं सबसे पहले है। सबसे पहले उसकी सृष्टि नहीं, वो सृष्टि करता है, उसने स्वयं सृष्टि करी। और इसीलिए अगर जब आप निर्गमन में आएंगे, तो निर्गमन में इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने कहा इसराइली मेरा पैलौठा है। एक स्थल देखिए वचन 57 से निकालिए और उसके 26 और 27 पद को पढ़िए। यहां पर किस प्रकार से दाऊद भविष्यवाणी की आत्मा में कुछ कह रहा है, 26 और 27 पद, मैं उसे अपना पैलौठा और जगत के सब राजाओं का प्रधान बनाऊंगा। किसके लिए पैलौठा? ये प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हो रही है कि किस रीति से, कैसे अब पैलौठा वो और सिद्ध हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, तो वो मुर्दों में जुटने वाले सबसे पहले थे। अब उसके बाद जितना भी लोग जो उसके विश्वास के बाद साथ उसके पीछे चलने वाले हैं, और वो भी जो उस पर विश्वास करते हैं, अब जो भी उसके बाद जी उठेंगे, मैं विश्वासी हुआ, आप विश्वासी हुए, दुनिया में असंख्य लोग, एक दो असंख्य लोग विश्वासी हो गए, जितने जो उसके विश्वासी हो गए, अब उसके बाद वो हो गए जिसके लिए ये आशा है कि हमने जितने विश्वास किया है मरेंगे लेकिन जी उठेंगे, उसके साथ अनंत काल तक राज करेंगे। तो हम अब उसके बाद में हो गए। वो सृष्टि में पैलौटा रहा, मुर्दों में से जी उठने वाले में पैलौटा रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन संकेतात्मक में होकर, तुलनात्मक आत्मा में होकर उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? कोई नहीं है जो मरने के बाद जी उठा हो, प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह जी ना उठे होते तो मैं और आप यहां पर बैठे ना होते। उसी के जी उठने के बाद ही मसीहत आरंभ हुई और कलीसिया की स्थापना हुई और प्रभु का कार्य आगे बढ़ा। जब वो जी उठा, मरियम ने साक्षी दी, देखो जी उठा है, देखो जी उठा है, और शिष्य खड़े हो गए और उसका सुसमाचार प्रचार होने लगा, कलीसिया स्थापना होने लगी। अब ये उनके लिए, जैसे वो जी उठा है, हमारे लिए भी ये आशा है कि हम जी उठेंगे। तो अब क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह न केवल सृष्टि करता है, लेकिन उसके पास वो सर्व अधिकार है जो पिता परमेश्वर के पास अधिकार है। और इसलिए वो कह रहा है कुलुसी को लिखकर पत्र में लिखते हुए, सृष्टि में पढ़ अब 16 पद में वो क्या कह रहा है, क्योंकि किस में? उसी यीशु में। वो यीशु जिसके द्वारा सृष्टि हुई, वो यीशु जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो यीशु जो पैलौटा है, क्योंकि उसी में सब वस्तु की सृष्टि हुई। अब यहां पर लिस्ट बनी हुई है किस किस की, सब वस्तु की सृष्टि। लेकिन तीन मुख्य बातें इसके अंदर, सृष्टि का वर्णन कर रहा है, इसकी सृष्टि हुई, वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग के अथवा पृथ्वी पर की, दृश्य अदृश्य, शासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त जितनी भी चीज सृष्टि में हम देख रहे हैं, सूरज किसने बनाया, चंद्रमा किसने बनाया, पृथ्वी और जल को अलग अलग किसने किया, अंधेरे और उजालों को अलग अलग किसने किया, आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं। आज ही मैं सुबह सुबह पेपर को देख रहा था, तो आज ही नवभारत टाइम्स में, तो हमारे देश के कोई लीडर है, उन्होंने कहा कि एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि मनुष्य बंदर से, मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है, उन्होंने उसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जिस वैज्ञानिक ने इस बात कहा, मैं जब से मैंने जितना अध्ययन किया है, हमारे देश के नेताओं कह रहे हैं कि जितना मैंने अध्ययन किया, मैंने देखा कि आरंभ से मनुष्य मनुष्य ही है। दूसरे रूप में क्या स्वीकार कर रहे हो, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को बंदर से नहीं बनाया, जानवर से नहीं बनाया, किसी और से नहीं बनाया, परमेश्वर बनाने वाला है। तो जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, पर तीन बातें हैं जो वो यहां कह रहा है, क्योंकि उसी में, पहली बात उसी के द्वारा, दूसरी बात उसी के लिए, जो कुछ भी सृष्टि, यद्यपि परमेश्वर ने मुझे और आपको भी बनाया है, मैं और आप भी उसकी रचना है, उसी की सृष्टि है, तो मैं और आप जो उसकी रचना है, उसी के द्वारा है, उसी के लिए है, उसी में है। प्रश्न यहां पर है, क्या ये मेरी सृष्टि है जो परमेश्वर मुझे सृजा है, जो ये मेरा जीवन है, ध्यान दीजिएगा, जो परमेश्वर मुझे बनाया है, क्या ये मेरी सृष्टि, हां ठीक है परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन क्या ये उसके लिए है, प्रश्न है, या संसार के लिए, या अपने लिए है, मैं अपने जीवन का स्वयं स्वामी हूं, अपने लिए मैं अपने लिए जी रहा हूं। यहां पर कह रहा जो कुछ भी उसने बनाया, आज संसार में जो कुछ भी है, जिस तरह परमेश्वर ने, अब मौसम को हम देखते हैं, आज सुबह सुबह मौसम एकदम गंभीर था, ऐसा लग रहा था जैसे, मुझे नहीं यहां का नहीं मालूम, लेकिन हमारे लखनऊ में ऐसा जैसे अभी बारिश हो जाएगी, हर किसान बारिश की अपेक्षा कर रहा है, आशा कर रहा है, अरे बारिश अच्छी हो जाएगी तो गेहूं ठीक हो जाएंगे, आशा कर रहा है। लेकिन बारिश को देने वाला कौन है, क्या विज्ञान के हाथ में है, क्या मनुष्य के हाथ में है, अगर वो तो कर लेते हैं सब कुछ, जो कुछ भी भूमंडल में चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वैज्ञानिक खोज करते हैं, खगोलवासी खोज करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अपने चीजों से, यंत्रों से सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी नियंत्रण किसका है, परमेश्वर का है, परमेश्वर का। जो हमारे अंदर श्वास है, श्वास वो भी परमेश्वर के नियंत्रण के द्वारा हमारे जीवन में चलती है, ये हमें समझना है। और इसके वो यहां कह रहा है सब कुछ, अगर सब कुछ वो कह रहा है उसी में, उसी के द्वारा, उसी के लिए, तो प्रश्न मेरे लिए, मुझे पूछना है, क्या ये मेरा जीवन उसके लिए है, कब मैंने अपने जीवन को उसके हाथों में दे दिया, प्रभु जी ये मेरा जीवन आपके लिए है, क्योंकि आपने इसको बनाया, आपने इसको बनाया। और तब आगे चल के कहता है वही सब वस्तुएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वही सब वस्तुएं प्रथम है, केवल पहलौठा नहीं है लेकिन प्रथम है ना, ना केवल प्रथम है लेकिन सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, वो सब कुछ को होल्ड करके रखा है, उसी में स्थिर रहती है, सब कुछ उसी में स्थिर रहती है। और ये हमें समझना है, तो 15 से लेकर 17 पद तक पहली बात है, जो यीशु है वो न केवल परमेश्वर का प्रतिरूप है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो यीशु सृष्टि का केंद्र है, इस पूरे संसार की सृष्टि उसी के द्वारा हुई, लेकिन इसलिए हुई ताकि वो उसके लिए हो सके। दूसरी बात, तब 18 पद से लेकर के आगे चल करके यीशु नई सृष्टि का केंद्र है। अब ये नई सृष्टि क्या है, सब कुछ सारी सृष्टि उसी के द्वारा, यशाया 44:24, प्रकाशवाक्य 3:14, निर्गमन 4:22-23, लेकिन 18 से यीशु नई सृष्टि का केंद्र है। क्या मतलब है यीशु क्या कह रहा 18 पद से? वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। एकदम से वो कलीसिया पे आ गया। कलीसिया क्या है? कलीसिया नई सृष्टि है। कलीसिया नई सृष्टि है, ये नया समुदाय है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मनुष्य के लिए वो मारे गए, गाड़े गए, क्योंकि हम पाप में थे। पाप के कारण हमारा जीवन नाश हो रहा था। पाप के कारण हम तो दंड हमारे पर आ चुका था। उत्पत्ति तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने दंड दिया, उसने कहा मनुष्य को, कहा तुम मिट्टी में बनाया है तो मिट्टी में मिल जाएगा। और इसीलिए जब मनुष्य मिलता है तो वो जाके वो मिट्टी में मिल जाता है, मिला जाता उसको। लेकिन अब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद कलीसिया का आरंभ हुआ। जब सुसमाचार प्रचार को किया, परमेश्वर अपने नया आत्मा उंडेला, प्रेरित काम उसके दूसरे अध्याय में पाते, उसने अपना आत्मा उंडेला, लोग बैठे रहते, प्रार्थना करते, परमेश्वर अपने आत्मा उंडेला। और वहां पर पहला समय था जब परमेश्वर ने यरूशलेम में कलीसिया की स्थापना की। और लिखा है जिन्होंने उसे ग्रहण किया, स्वीकार किया, उन्हें बपतिस्मा लिया, विश्वास रथ मिल गए, और कलीसिया में संगति पाने में, रोटी तोड़ने, शिक्षा पाने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे, लगे रहे, और कलीसिया बढ़ती गई। तो एक नया समुदाय बन गया, नई सृष्टि बन गई। अब हम जो एक विश्वासी जो है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगी है, वो उस कलीसिया के अंग हैं। अब वो नई सृष्टि के भागी हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है अब इस कलीसिया में क्या है? वो कह रहा है वो देह अर्थात कलीसिया, कलीसिया एक देह है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सिर है, उस देह का सिर है, इस पूरी देह को संचालित करने वाला सिर है। आपका हाथ कट जाए तब भी आप जिंदा रह सकते हैं, पैर कट जाए तब भी आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर गर्दन कट के अलग कर जाए तो आप नहीं चल सकते। ये कलीसिया का सिर, प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, इस कलीसिया का हमारा सिर है, वो इस देह को चलाने वाला है। ये नई सृष्टि अब उसके संचालन के अंतर्गत है, उसके नियंत्रण में है। और उत्तम कह रहा है वही आदि और मरे में से जी उठने वालों में पहला ढंग। फिर से वो क्या कह रहा है? जिससे कि सब वस्तुओं में उसी को प्रथम स्थान मिले, क्योंकि पिता को यही भाया कि समस्त परिपूर्णता उसी में वास करे, उसी को उसी में। पौलुस एक बात को कुलुसियों के लिखते हुए जोर दे रहा है विश्वासी को कि ठीक है तुम इस तरह से प्रभु में आ गए हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं विश्वास में बढ़ो, तुम्हारा चरित्र और उत्तम हो सके, तुम धैर्य रख सको, तुम्हारा आनंद बढ़ता जाए, ये सब कुछ तुम धन्यवादित बन रहो, ये सब को कह रहा मैं इन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन आगे चल के कहता क्यों इस बात को? क्योंकि उसने तुम्हारा छुटकारा किया और तुम जान लो यीशु कौन है। जितना अधिक मैं और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जानते जाते हैं, उतना अधिक हमारी निर्भरता यीशु पर होती है, हमारा जीवन परिवर्तित होता है और हम यीशु के प्रति धन्यवाद बने रहते हैं और आराधक बनते हैं। सोयाबोर कह रहा है इसलिए उसको जाना, कह रहा उसी को प्रथम स्थान मिले। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में, यदि वो हमारा सिर है, इस कलीसिया का, इस देह का सिर है। अब देह इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, और देह सामूहिक है। मैं एक कलीसिया का अंग हूं लेकिन कलीसिया का भाग हूं। हम सब सामूहिक रीति स्थानीय कलीसिया के संभागी, एक परिवार के लोग हैं। कलीसिया एक परिवार है लेकिन उस परिवार को संचालने वाला एक मुखिया है। लेकिन हमारा ये जरूर यहां पर घर में हम छोटे परिवार को देखें, फिर कलीसिया में आ जाएं, फिर लेकिन सबसे बढ़कर जब हम देखते हैं जो आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे श्रेष्ठ हमारा सर है, उसके संचालन में हम चलते हैं। वो कर लेकिन वो कहता है कि उसी को प्रथम स्थान मिले, क्योंकि पिता को यही भाया कि उसी में सब वास करें। तो ये 17 और 18 19 पद में, और तब उसके बाद 20 पद में क्या कह रहा है? और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं के साथ अपना मेल कर ले, चाहे पृथ्वी की चाहे स्वर्ग की। सीक्रेट क्या है? रहस्य क्या है? कैसे संभव हो गया? कैसे ये नई सृष्टि बन गई? कैसे नई देह की बात आ गई और सिर की बात आ गई? कैसे हो गया? वो यहां पर पाया जाता है 20 पद में। उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा। यह मुख्य बात है, प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसके क्रूस पर जो उसने लहू बहाया है, केवल हमारे रोगों की चंगाई के लिए नहीं, जरूर प्रभु यीशु मसीह का लहू में रोगों से भी चंगाई प्रदान करता है, लेकिन अगर हमारी शारीरिक चंगाई मिल जाए लेकिन हमारी आत्मिक चंगाई नहीं हो तो सब कुछ व्यर्थ है ना। समस्या क्या है? समस्या हम आत्मिक वस्तुओं की खोज से पीछे रहते हैं, हमारा ध्यान संसार 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 की चीजों में रहता है, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मिक अभिलाषा लालसा होनी चाहिए। वो कह रहा है सबसे बड़ी बात यह कि उसने एक कीमत चुकाई है। वो कीमत क्या चुकाई? उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया। हमारे लिए बोलना सरल है, लेकिन जब वो क्रूस पर लहू बहा रहा था वो सरल नहीं था। वो निंदा जो उसने सही वो सरल नहीं थी, वो पीड़ा जो उसने सही वो सरल नहीं थी, जो कीमत उसने चुकाई वो सरल नहीं थे। वेदना, उसने कोई भी पाप नहीं किया था, वो निष्पाप और परमेश्वर का स्वरूप है, और परमेश्वर का स्वरूप होकर परमेश्वर का प्रतिरूप होकर इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, और उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, वो लहू बहाया, ताकि उस लहू बहाए जाने के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हो सके, और तब मैं और आप एक नई सृष्टि बन सके। और वो नई सृष्टि जो उसकी कलीसिया है, जिसका वो स्वयं सिर है, ये है। तब वो कह रहा है कि लहू बहाके क्या हो सके, शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तु में अपने साथ मेल कर ले। क्यों? जब पाप आया तो पाप के कारण शांति भंग हो चुकी थी, शांति की जगह तो अशांति और भय उत्पन्न हो गया था। तभी तो आदम और हवा ने अपने आप को झाड़ियों के अंदर छिपा लिया था, और जब परमेश्वर ने पूछा आदम आदम तू कहां है, तो आदम ने कहा कि मैं डर गया था। और तब उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए, जैसे चौथे अध्याय में आइए, तब हाबिल और केन को देखते हैं, केन हाबिल का अपने भाई को घात करता है, वहां अशांति उत्पन्न हुई। और आराम से देखते चले जाइए, ये अशांति का जो क्रम है बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला गया। पाप मनुष्य के जीवन में अशांति उत्पन्न करता है, लेकिन प्रभु ने उस अशांति को जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आ चुकी थी उसको शांत करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। तो यहां पर दूसरी बात, तो दूसरी बात क्या है? यीशु ही नई सृष्टि का केंद्र है, और नई सृष्टि क्या? उसकी कलीसिया है, जिसमें मैं और आप सहभागी हैं। और यह कैसे हुआ? यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। कब? उसके बाद, और उसको वो स्पष्ट करता है तीसरी बात पे, 21 से 23 पद तक। यीशु हमारे छुटकारे का केंद्र है, तीसरी बात, यीशु हमारे छुटकारे का है। 21 वर्ष से तुम पहले तो अलग किए हुए थे, मन से बैरी थे और बुरे कामों में लगे हुए थे। तीन बातें, कैसा? ये पाप के कारण मेरा और आपका ये स्वभाव बन चुका था, पाप के कारण ये मेरा और आपका स्वभाव बन चुका था, ये मेरा और आपका चरित्र बन चुका था, ये मेरा और आपका जीवन बन चुका था। क्या था? तीन बातें। वो क्या कह रहा है? तुम उससे अलग किए हुए, पहली चीज, हम अलग हो गए थे। यशाया उसके 59 अध्याय 59:2 में, दो पद में कहते, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया, अलग कर दिया, हम अलग थे। दूसरी बात करें, मन से बैरी थे, अब वो मेल की जगह बैर उत्पन्न हो गया, और बैर उत्पन्न करने वाला कौन था? वो शत्रु शैतान, जिसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बैर उत्पन्न कर दिया था। ना केवल वस करा, लेकिन वहां हवा और स्त्री के बीच में, हवा और आदम के बीच में, उसी समय आदम कहने लगा, ये स्त्री के कहने से मैंने खाया जिसको तूने दिया, वही चालू हो गए दोनों एक दूसरे पर दोष लगाने लगे, वही उसी स्थान पर जैसे ही पाप में गिरे एक दूसरे के, ना कल परमेश्वर उनके लगा हुआ वहां पैर उत्पन्न, लेकिन आपस में। आज हम परिवारों में, भाई भाइयों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, संबंधियों में, गांव में, कितना बातों को देखते हैं, यह है उसी का प्रभाव, ये उसी का प्रभाव है, छोटी छोटी चीजों में। लेकिन वो क्या कह रहा है, हम मन से बैरी थे और क्या था, और बुरे कामों में लगे हुए थे, हम उसमें लिप्त थे, हम उसमें जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम, मैं अक्सर बोलता हूं कि हमारा खाना पाप, पीना पाप और सब कुछ इसी में लगे रहते थे। ये वो हमारे जीवन में वही आनंद का कारण था। लेकिन क्या हुआ 22 पद में, फिर भी ऐसी स्थिति में भी जबकि हम उसके बैरी थे, हम उससे अलग थे, हम बुरे में लगे हुए थे, फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया। वो वहां कह रहा क्रूस पर, फिर उसी को एक्सप्लेन कर रहा है यहां पर, वही चीज को और समझा रहा पौलुस। वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, अब उसी चीज को वहां और अधिक थोड़ा सा बड़ा के वो समझाने के लिखना चाह रहा है। वो क्या कह रहा है, उसने शारीरिक देह मृत्यु के द्वारा, क्यों कि प्रभु यीशु मसीह उस शारीरिक देह में होकर क्रूस पर उसने मृत्यु सही, वो स्मृति में जब आया वो पूर्ण मनुष्य था, पूर्ण परमेश्वर है, लेकिन पूर्ण परमेश्वर के साथ साथ स्मृति में होकर वो पूर्ण मनुष्य बनकर रहा और उसने अपने आप को ऐसा करा ताकि क्या कर ले, इसलिए कि तुम्हें अपने समक्ष पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अलग थे, बुरे कामों में लगे हुए थे, उसके बैरी थे, लेकिन यीशु ने क्या कर दिया, यीशु मेरे आपके लिए परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थ बनकर खड़ा हो गया, बिछवाई बनकर खड़ा हो गया। उसने कहा रॉली तूने पाप किया है, मैं तू अब परमेश्वर से मिल नहीं सकता, तू परमेश्वर से अलग है, मैं तेरे लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को बलिदान करता हूं। यही आपके लिए है, मनोज मैं तेरे लिए, मुकेश मैं तेरे लिए, जो भी आप अपना नाम करते हैं, आप अपने नाम को लेकर आपके लिए वो प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया है। और तब उसे करके ऐसे करके मेल कराया है, उपस्थित करे। 23 पद, ये तब ही संभव है यदि तुम सचमुच विश्वास में दृढ़ होकर स्थिर बना रहो और सुसमाचार की आशा रखो। सुसमाचार क्या है, फिर से मैं उसी बात पर आ रहा हूं। पुराण जब पौलुस आगे आरंभ करता है, आरंभ करते हुए उन्हीं बातों को वर्णन करता है, वो प्रेम की बात करता है, विश्वास की बात करता है, आशा की बात करता है, सत्य वचन की बात करता है, सुसमाचार की बात करता है, सच्चाई की बात करता है, अनुग्रह की बात करता है, पहले भाग में पिछली बार मैं समझा चुका हूं। लेकिन अब फिर वही बात को घुमा फिरा के कह रहा है, वो कह रहा है सुसमाचार को। सुसमाचार क्या है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव मनुष्य, पापी मनुष्य के लिए संसार में मनुष्य बनकर आया ताकि पापियों के लिए अपने आप को प्राण को बलिदान करें। यह सबसे बड़ी काम, यह हमें यीशु का समझना है। यीशु में क्या श्रेष्ठता है, यीशु में क्या विशेषता है, यीशु में श्रेष्ठता यह, यीशु में विशेषता यह है कि वो जो सृष्टि करता है, वो जो आरंभ से है, जिसका ना कोई आदि और ना कोई अंत है, प्रकाश तो आके में बार बार उसके लिए लिखा हुआ है, उसका कोई आदि और कोई अंत नहीं है, वो आरंभ से है, लेकिन वो मनुष्य बनकर सीमित होकर, जैसे मनुष्य सीमित है, वो सीमित होकर संसार में आ गया और आके मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि वो मेरा और आपका परमेश्वर के साथ मेल करा दे। और वो क्या कह रहा है, विश्वास में दृढ़ स्थिर बने रहो, सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे कि समस्त सृष्टि में किया गया, जिसका मैं पौलुस साक्षी बनाऊं, आकाश के नीचे सृष्टि में अर्थात पृथ्वी पर, और पृथ्वी में पूरे संसार में, पूरे संसार में बहुत सारी चीज, आजकल विज्ञान का समय है, आप लोग सब लोग जानते हैं, मोबाइल बच्चे बच्चों के हाथ में है, यूट्यूब बच्चे बच्चे खेलते हैं, लेकिन अगर आप सुसमाचार की बात करें, यह सुसमाचार भी कहीं छूटा नहीं है। आप किसी भी यूट्यूब में गॉस्पल करके सर्च कर लीजिए, आपको एक से एक संदेश मिलेंगे, परमेश्वर के वचन मिलेंगे, छूटे नहीं है। परमेश्वर ने अपने सुसमाचार से, अपने संदेश से किसी को अछूता नहीं रखा है, और जैसे जैसे उसका आने का समय निकट होगा, जैसे जैसे उसका आने का समय निकट होगा, वैसे वैसे हम उन बातों को देखते चले जाएंगे, क्या है कि सुसमाचार लोगों को पहुंच रहा है। सरकार बदल सकती है, सरकार साधन रोक सकती है, सरकार सब कुछ करती है, मनुष्य बहुत कुछ करता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के कार्य को नहीं रोक सकता। मनुष्य परमेश्वर, ये मनुष्य मेरी और आपकी हत्या करता है, लेकिन फिर भी, क्योंकि एक दिन उस सृष्टिकर्ता के सामने हर एक को खड़ा होना होगा। और इसीलिए मैंने कहा फिलिप्पियों उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, एक दिन हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। सो यहां पर वो कह रहा है, वो कह रहा है जिसका मैं पौलुस साक्षी बनाऊं, गवाह बनाऊं। पौलुस ने क्या अपने जीवन में अनुभव किया था? पौलुस के पास धर्म ज्ञान की कमी नहीं थी, विद्वान था, सब कुछ जानता था, लेकिन वो ये जान रहा था कि सब कुछ होने बाद भी उसका जीवन परमेश्वर से अलग है, वो परमेश्वर का बैरी है, उस बात को जान रहा था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो उस दिन के लिए जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला। और यहां कुलुसी में इस दूसरे भाग में पौलुस इस बात को बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह सब कुछ का केंद्र है। क्या सचमुच में वो मेरे जीवन का केंद्र है? प्रश्न यह है, क्या सचमुच में मैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखता हूं, जानता हूं? मेरी चाहना यीशु मसीह के लिए कितनी अधिक है? इतवार को आराधना में आना बहुत अच्छी बात है, प्रभु में अपने भाग और हिस्से को देना बहुत अच्छी बात है, घर में रहकर बाइबल को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन इस बात की अभिलाषाएं बढ़ते जाना कि मैं इस बात को जान सकूं यीशु मसीह मेरे लिए क्या महत्व रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और प्रभु मेरे और आपकी सहायता करें कि हमारे अंदर ये छत बनो, हम जान सके जिस यीशु की मैं आराधना करता हूं क्या वो यीशु औरों से अलग है या जैसे वो उनमें से एक है? नहीं, वो यीशु जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया ताकि हम उस पर विश्वास करके जीवन प्राप्त करें, और उसने मुझे और आपको नई सृष्टि बनाया। परमेश्वर के जिम लिखा है जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। कौन सी पुरानी बातें बीत गई? जो दंड हमारे ऊपर था वो बीत गया, जो पाप का शाप था हमारे पर, दंड था, वो हमारे जीवन में बीत गया, जो परमेश्वर के हम बैरी थे वो बीत गए। अब प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर पिता के मित्र बन गए, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमें अपना मित्र बना लिया। यूहन्ना में वो स्वयं कहता है कि मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। पुरानी बातें बीत गई, वो जो हमारी आशाहीन दशा थी वो बदल गई, अब हमारे पास आशा है। आज भी अगर हमारी आंखें बंद होंगी तो हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु साथ रहेंगे, ये हमारी आशा है। जरूर हम जब किसी हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है, हम कब्रिस्तान में जाते हैं, जरूर सब लोग बोलते हैं वही बात को है, हम एक दिन जी उठेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसमें मिलेगा, अच्छी बात है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा आशावादी होते हैं ना। मैं अक्सर बोलता हूं ना, कोई जितना बड़ा अगर चोर लुटेरा बदमाश होगा वो हम कहेंगे अरे बहुत चोर है लुटेरा बदमाश है, मर जाता तो अच्छा था, लेकिन जब मर जाएगा तो उसके कहे स्वर्ग फलाना फलाना है ना। जीते जी उसको कहेंगे नरक में जाएगा, मर जाएगा तो उसके स्वर्ग ही लगाएंगे। मानवीय स्वभाव है हमारा ना, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे और आपको नई सृष्टि बनाया है, कि परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर अपने लहू से खरीदा है, हमारे अंदर निर्बलता है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं, मेरे और आपके अंदर की लालसा क्या है प्रभु यीशु मसीह के साथ, ये सबसे बड़ी बात, वो उसी के साथ मेरे साथ और आपसे व्यवहार करना चाहता है। हम कोई सिद्ध नहीं है अपना, मैंने कहा आराम से हम मनुष्य है, वो सिद्ध नहीं कि हम परमेश्वर के रूप को प्रदर्शित कर सके, इसीलिए पौलुस कहता हम अंश अंश करके उसके रूप में बदलते जा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर एक लालसा, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें हम जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह नई सृष्टि का केंद्र है। प्रभु यीशु मसीह नई सृष्टि, क्या वो सचमुच में नई सृष्टि जो उसने मुझे और आपको बनाया है वो मेरा केंद्र है, आपका केंद्र है? आइए प्रार्थना।